हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंध प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 16। इन आध्यात्मिक शब्दों को उच्चारण करने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माध्यस्य यतोन् वयादितरतश् चातिष्वभिज्ञः स्वराः तेने ब्रह्मरिदाय आदिकवये मुहुयन्ति यात् सूरयः तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो गोमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोजितकर्तवोत्र परमो निर्मत्सराणां सदा वीद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैश्वरः सत्योरित्यवरुध्यति प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा निगमकल्पतरुर्गलितं फलम् शुकमुखात् अमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतम् रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वकरान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। नष्टप्रायेषु भक्तेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं केशवं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। वंशाकल्पतरो भयस्य कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासुदी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। 1.1.16 कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। ऋषिगण कहते हैं, को वा भगवतस्तस्य पुण्य श्लोकीर्य कर्मणा शुद्धि कामो न श्रूयात् यशः कलिमलापहम्। को वा भगवतस्तस्य पुण्य श्लोकीर्य कर्मणः शुद्धि कामो न श्रूयात् यशः कलिमलापहम्। को वा भगवतस्तस्य पुण्य श्लोकीर्य कर्मणः शुद्धि कामो न श्रूयात् यशः कलिमलापहम्। को वा भगवतस्तस्य पुण्य श्लोकीर्य कर्मणः शुद्धि कामो न श्रूयात् यशः कलिमलापहम्। को वा भगवतस्तस्य पुण्य श्लोकीर्य कर्मणः शुद्धि कामो न श्रूयात् यशः कलिमलापहम्। को वा भगवतस्तस्य पुण्य श्लोकीर्य कर्मणः शुद्धि कामो न श्रूयात् यशः कलिमलापहम्। को वा भगवतस्तस्य पुण्य श्लोकीर्य कर्मणः शुद्धि कामो न श्रूयात् यशः कलिमलापहम्। को वा भगवतस्तस्य पुण्य श्लोकीर्य कर्मणः शुद्धि कामो न श्रूयात् यशः कलिमलापहम्। को वा भगवतस्तस्य पुण्य श्लोकीर्य कर्मणः शुद्धि कामो न श्रूयात् यशः कलिमलापहम्। शब्दों का अर्थ देखिए। को अर्थात कौन, वा बल्कि, भगवत भगवान का, तस्य उसका, पुण्य पुण्य आत्मा, श्लोकेद्य अर्थात स्तुतियों द्वारा पूजनीय, कर्म कर्म शुद्धि काम समस्त पापों से उद्धार की इच्छा करने वाला, न नहीं श्रुयात सुनता है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि ऐसा कौन है, को वा भगवतस्तस्य, यानी ऐसे भगवान की, ऐसा कौन है जो ऐसे भगवान की शुद्ध करने वाली, यानी कि जब हम सुनते हैं भगवान के पुण्य श्लोके जय कर्मण स्तुतियों द्वारा पूजित, ऐसे स्तुतियों को, ऐसे गान को, भगवान की कथा को, भगवान की महिमा को सुनने के लिए कौन मना करेगा, ऐसा कौन बेवकूफ होगा जो कि नहीं सुनना चाहेगा। क्यों, उससे क्या होने वाला है, भगवान की कथा श्रवण करने से क्या क्या रिजल्ट निकलेगा। उसके लिए कहते हैं शुद्धि कामो, यानी समस्त पापों से उद्धार की इच्छा करने वाला, क्योंकि इस संसार में भगवान की पवित्र लीलाओं का श्रवण करने से अधिक कोई भी तरीका नहीं है अपने हृदय को पवित्र करने वाला। जब हम श्रवण करते ना, तो वो श्रवण भगवान की कथा, भगवान का जो कीर्तन, भगवान के पवित्र नाम का गुणगान जब हम श्रवण कर रहे होते हैं, तो इससे हमारे हृदय की समस्त मलिनता, समस्त गंदगी साफ हो जाती है। तो यहाँ पर ऋषिगण कह रहे हैं शुद्धि कामो न श्रुणात, शुद्धि की इच्छा है और नहीं सुनेगा, ऐसा कौन हो सकता है। यश है कलिमलापहम, यश मतलब यश, कलिमल आपह,
कली का मतलब होता है कलयुग के लोहम, युग, जो कलयुग का अपवित्र युग है ना। मल आपह, मल आपहम का मतलब होता है शुद्ध करने वाला। कली मल आपह यानी कली के मल को, मल मना गंदगी को साफ करने वाला। ऐसा कौन होगा जिसकी इच्छा है कि कलयुग की जो गंदगी है वो मेरे हृदय से पवित्र, मेरा हृदय उस गंदगी से पवित्र हो जाए, तो ऐसा कौन होगा जो भगवान की कथा नहीं सुनना चाहेगा। वास्तव में भक्तों, कालांतर से केवल भगवान की कथाओं को श्रवण करने की प्यास को बताया गया है। पहले 13 में क्या बोला था, कन्नह शुश्रूषमाणानां अहस्यंगानुवर्णितुं यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। हे सुत गोस्वामी, हम भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने के इच्छुक हैं। कृपया करके हमें पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके कहने तथा सुनने दोनों से ही मनुष्य का उत्कृष्ट होता है। हम सुनना चाहते हैं, भगवान की कथाओं को श्रवण करने की प्यास है हमारे हृदय में, तो आप सुनाइए। क्या आप हमें नहीं सुनाएंगे, हमें सुनाइए। इस तरह पहले, उसके बाद बोला आपन्न संस्तिम गोरा यन्नाम विवशो ग्रहण ततः सद्यो विमुच्येत यद्यपि स्वयं भयम्। वह भगवान जिसके केवल नाम उच्चारण मात्र से भय भी भयभीत हो जाता है, और सद्यो विमुच्येत मनुष्य तुरंत ही मुक्ति प्राप्त करता है, ऐसे भगवान के यश को, ऐसी भगवान की कथाओं को हम श्रवण करना चाहते हैं, तो क्या आप हमें नहीं सुनाएंगे। और आगे यत्पाद संशयासूत मुनयः प्रशमायना सद्य पुनंत्युपस्तुष्टा स्वर्धुन्या पोनु सेवया। गंगा मैया तो पवित्र करती है स्नान करने से, लेकिन ये उनका प्रभाव कैसे है, क्योंकि भगवान श्री हरि के श्री चरणों से निकलता है वो जल, और उसका इतना प्रभाव है कि मनुष्य को पवित्र कर देती है। उनके पिछले जितने भी अपवित्र कार्य होते हैं, जितने भी अपराध होते हैं, उनको क्षमा कर देती है, उनसे उनकी मुक्ति हो जाती है। लेकिन भगवान के जो भक्तगण हैं, जो सदैव भगवान के चरणों की भक्ति करते रहते हैं, वो तो उस गंगा मैया से भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उनकी सिर्फ शरण जाने में, उनका सिर्फ सानिध्य मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। तो उन भक्तों के अंदर कहां से आया पावर, क्योंकि वो भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, क्योंकि भगवान के श्री चरणों का सानिध्य, ये सारा का सारा श्रेय तो भगवान की कथा को जा रहा है ना, कि क्योंकि वो सदैव भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं और कथाओं का गान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं 10.9 में कि मच्चित्ता मत्कृतः प्राण बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे भक्तों को यदि पहचान न हो तो देख लेना, जो मेरी कथाओं को श्रवण करने से प्रसन्न होते हैं, जो मेरी कथा को श्रवण करते हैं और उनका हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, या मेरे भक्त जब आपस में मिलते हैं तो केवल और केवल मेरे विषय में बात करते हैं और इससे उनको अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है, तो वो इसलिए पवित्र करते हैं क्योंकि वो सदैव भगवान की कथाओं का गुणगान करते रहते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि वो भक्तजन उनकी शरण ग्रहण करने से तो है ना, जीव तत्काल पवित्र हो जाता है, वो इसलिए क्योंकि भगवान की कथा श्रवण करते हैं। अब यहाँ पर आज कह रहे हैं, को वा भगवतस्तस्य पुण्य श्लोकेद्य कर्मणः शुद्धि कामो न शृणुयात् यशः कलिमलापहम्। इस कलह प्रदान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो भगवान के पुण्य यशों को नहीं सुनना चाहेगा। यहाँ पर ऋषिगण अपनी उत्सुकता को अत्यंत ही तीव्रता से बता रहे हैं। मतलब जैसे हम कोई चीज आपसे पूछें और वो इम्पोर्टेंट थोड़ी होती है, क्योंकि एक एक अकेला बंदा जानना चाहता है। लेकिन अगर पूरा ग्रुप बोलेगा ना, हाँ दीदी मैं भी सुनना चाहती हूँ, हाँ मुझे ये, मुझे भी ये सुनना है, मुझे भी सुनना है, मुझे भी सुनना है, मुझे भी सुनना है, तो यदि सब लोग सुनना चाहते हैं तो फिर वो बात जो वक्ता होगा वो उस चीज को बहुत ज्यादा जल्दी से बताएगा कि भाई हाँ सब लोग का यही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बता रहे हैं ये केवल हमारा, जो हम 88,000 यहाँ पर बैठे हुए ना, उनका खाली प्रश्न नहीं है। ऐसा तो कोई जीव होगा ही नहीं जो कि कलयुग के इस दुर्वासना वाले, जो कलयुग के दुर, यहाँ कलयुग कली मलापहम, ये कलयुग के अपवित्र युग से अपने आप को पवित्र करना चाहता है, इसके दुष्परिणामों से बचना चाहता है। यदि किसी की इच्छा है कि वो अपना उद्धार करे इस कलयुग से, तो ऐसा कौन होगा जो नहीं सुनना चाहेगा, अर्थात सबको ही सुनना चाहेंगे। यहाँ पर ऋषिगण जो है वो जीव की ऐसी ऐसा भाव होता है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरों को तोलता है, क्योंकि उन सबको बहुत ज्यादा इच्छा थी भगवान की कथा श्रवण करने की। तो उनको वो सुत गोस्वामी को कहते हैं कि आप सुनाओ, क्योंकि सब सुनना चाहेंगे, क्योंकि ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये कितनी इम्पोर्टेंट बात है कि आप भगवान की कथाओं को सुनाओगे। तो केवल यही एक उपाय है कलयुग के मल से अपने आप को पवित्र करने का, सिर्फ एक ही तो उपाय है। तो कौन ऐसा होगा जो नहीं सुनना चाहेगा। लेकिन यहाँ पर तो भक्तों ये पूछना पड़ता है कि कौन ऐसा है जो आज कथा सुनना चाहता है। मतलब ऐसा होता है कि कथा के नाम से बुखार आने शुरू हो जाता है कि कथा सुननी पड़ेगी, अभी अभी तो 40 मिनट 45 मिनट की कथा सुननी पड़ेगी। तो ऐसा लगता है कि ये हमारे ऊपर कोई बिजली गिर रही है कि भाई नहीं, ये बहुत मेरे पर अत्याचार होने वाला है। अक्सर हम पूछते हैं ग्रुप में कौन कथा सुनना चाहे, बोले नहीं आज नहीं, भले पोस्ट करो। कथा में रुचि नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि जीव अपना कल्याण चाहता नहीं है, या फिर जीव इतना अज्ञानी है कि उसे समझ में नहीं आता कि मेरा कौन सा, किस चीज में मेरा कल्याण है। शास्त्र साफ साफ बताता है शुद्धि कामो न श्रोणाम, जो वाकई में शुद्ध होना चाहते हैं, जो वाकई में शुद्ध होने की इच्छा करते हैं, ना सुना तो फिर तो हो ही नहीं सकता कि वो ना सुने, फिर तो जरूर सुनेंगे। क्यों? कलिमलापहम, यश कलिमलापहम। वास्तव में कलयुग के प्रभाव से जो इंद्रिय सुख की लालसा हृदय में बढ़ गई है, उस हृदय की लालसा को यहाँ पर कलिमलापहम कहा गया। उस लालसा को, उस वासना को पवित्र करने के लिए भगवान की कथा के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं दिखता ऋषिगण को। इसलिए यहाँ पर ये जो कलिमलापहम है ना, इसका मतलब होता है कलयुग के कारण जो लोगों के दिलों में इंद्रिय सुख की जो लालसा बढ़ गई है, जिसके बगैर वो रह नहीं सकता है। इतने, हालांकि शास्त्रों में बहुत सारी चीजें मना की गई हैं कि ये नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी कलयुग का प्रभाव ऐसा घिनौना है जिसके कारण जीव अपनी अपने कल्याण को नहीं देखता। शास्त्र में स्पष्ट रूप से मना किया गया है कि शराब नहीं पीनी चाहिए, साफ शब्दों में लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी ये जानबूझकर, परंतु ये जो कलयुग के लोग है ना, अज्ञानता इतनी बढ़ गई है कि मनुष्य जानबूझकर अज्ञानता में रहना चाहता है। अब सिगरेट को ले लीजिए, सिगरेट के पॉकेट के ऊपर, जो सिगरेट का पैकेट है ना, उसके ऊपर लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। देखो तुम पी रहे हो, लेकिन तुम्हें सावधान होना चाहिए, वार्निंग लिखी होती है कि ये आपकी स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत खतरनाक है। लेकिन जीव फिर भी सोचता है भले मैं पी रहा हूँ, पता भी होता है कि ये हमारे लिए हानिकारक है, फिर भी पीने के लिए तैयार होता है। तो मनुष्य और है ना, इसी तरह से शास्त्र में लिखा हुआ है, मैंने आपको जैसे पहले नरकों के विषय में बताया था, 28 नरकों के विषय में, सारे अपराधों की सजा, जो मांस आहार करते हैं उनकी सजा, जो शराब पीते हैं उनके लिए सजा, जो अवैध संघ करते हैं उनके लिए, कितनी कितनी सजाओं के विषय में हमने पढ़ा था, है ना। लेकिन फिर भी जैसे जो शराब पीता उसका जो यमदूत होते हैं वो रस्सियों से मुंह खोलते हैं और पिघलता हुआ लोहा उसको पिलाते हैं, जैसे पिघलता हुआ सीसा उसके मुंह में डालते हैं, उसके कानों में जो निंदा सुनता है उसके कानों में डालते हैं, और जो अवैध पुरुष या स्त्री का संग करता है, तपते हुए लोहे के खंभे जिन पर अग्नि जल रही होती है उनसे उसको प्रेम करने के लिए, उनको आलिंगन करने के लिए विवश किया जाता है। जो पशु हिंसा करते हैं तो उनके शरीर का मांस काट काट कर पशुओं को खिलाया जाता। कितनी घिनौने घिनौने कलयुग के हमने नरक के विषय में पढ़ा था। लेकिन मनुष्य सोचता है कि ये तो सिर्फ शास्त्र में लिखा है ना, मनुष्य सोचता है कि मैं नरक नहीं मानता, नरक नहीं मानूंगा तो क्या नरक में नहीं जाना पड़ेगा। अरे मानो या ना मानो, कोई क्रिमिनल अगर ये सोचता है कि मैं जेल नहीं मानता तो क्या जब जेलर आएगा और उसको लेकर जाएगा तो फिर उसको फिर बाद में पता चलेगा ना कि ये जेल है। जिस दिन पकड़ के ले जाएंगे तब तो मानना पड़ेगा, रियलाइज हो जाएगा। उसी तरह से शास्त्र में लिखा है कि अपराधों की क्या सजा, लेकिन जीव इतना अज्ञान में रहना चाहता है। लिखा हुआ है कि आपको नॉन वेजिटेरियन नहीं खाना चाहिए, लिखा हुआ है कि शराब, लेकिन फिर भी अपराध करते वक्त शर्म भी महसूस नहीं करता। अपराध करते वक्त एटलीस्ट उसको ऐसा तो फील हो कि मैं अपराध कर रहा हूं, लेकिन एकदम पार्टीज में शराब के गिलास को सिर पर रख के नुमाइश करते हुए, पब्लिसिटी करते हुए, सॉन्ग्स में इतने सॉन्ग्स होंगे उसके ऊपर डांस करते हुए शराब पीते हैं, और वो भी कोई लुचे लफंगों की बात नहीं, एकदम जो सिविलाइज लोग होते हैं, जो बहुत बड़े टाइप के लोग होते हैं वो ऐसा कार्य करते हैं, शराब पीते हैं, मानता है, दावतें करते हैं और सब जो इटली, बल्कि ऐसा है कि जो नहीं खाते उसको बेचारा कहते हैं कि ये बेचारा क्या खाएगा, हम लोग पार्टी करेंगे ये क्या खाएगा, ये तो बेचारा है, ऐसा लगेगा कि वो ही खराब है जो नहीं खा रहा है। लेकिन शास्त्र कहता है ये अपराध है, और अपराधी व्यक्ति तो कभी सुखी नहीं हो सकता। वास्तव में इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने सबसे पहले यही नियम बताया, चार पाप मत करो, नो मीट ईटिंग, मांसाहार मत करो, नो गैम्बलिंग, जुआ मत खेलो, नो इंटॉक्सिकेशन, नशा मत करो, नो इलिसिट सेक्स, अवैध संग मत करो। पता है जब शुरू शुरू में श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका में गए और ये चार नियम बताए तो फिर सबने कहा, स्वामी जी यदि आप इतना नो 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 करेंगे तो फिर कोई भी आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो ये सब अपराध नहीं माना जाता, तो आप ऐसे नहीं ये फौरन से इतने सारे नियम ना बताओ। तो श्री प्रभुपाद ने बोला, कोई माने या ना माने, मैं कभी भी अपने स्टैंडर्ड से नीचे नहीं जाऊंगा, ये अगर ये चार पाप तो छोड़ने ही पड़ेंगे इनको। क्यों इसलिए, क्योंकि महाराज परीक्षित ने ये चार सीट दी है कलयुग को बैठने के लिए, कि आप इन चार जगहों पे बैठ सकते हो, तो जो इन चार चीजों का सेवन करता है वो अपराधी हो जाता है। और यदि कोई इस कलयुग के अपराध से, इस कलयुग के प्रभाव से बचना चाहता है तो यहाँ पर ऋषिगण उपाय बता रहे हैं कि देखो, यदि शुद्धि कामो न शुणात यशः कलिमलापहम, यदि कोई चाहता है कि मैं इन अपराधों के प्रभाव से बच जाऊं, यदि कोई चाहता है कि मेरा हृदय इन अपराधों की इच्छा से विमुक्त हो जाए, तो फिर वो तो अवश्य ही भगवान की कथाओं को श्रवण करने करना चाहेगा। क्योंकि इसके अतिरिक्त और जितने भी हैं, और भी हैं उपाय जिनके कारण शुद्धि होती है, लेकिन उससे क्या, कोई कोई लोग बोलते हैं ना, ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, जब नहीं करो आता ना, तो उससे हम थोड़े टाइम के लिए उस चीज से बचना चाहते हैं। सिर्फ ऐसे कि जैसे बच्चे को बोल दिया जाए कि देखो आपको चॉकलेट नहीं खानी, लेकिन जैसे उसको मौका मिलता है वो कार्य करना शुरू कर देता है, जैसे मम्मी उधर जाती है या फिर कहीं से भी उसको, लेकिन मेन क्या है, आपके हृदय से इच्छा खत्म हो जाए। आपके हृदय के अंदर जो दुर्वासना है वो खत्म हो जाए और वो केवल ये चमत्कार भगवान की कथा कर सकती है, भगवान के पवित्र नाम का स्मरण कर सकता है, भगवान की कथाओं का गुणगान कर सकता है। इससे होल सेल में प्रत्येक जीव को शुद्ध करने का केवल एक ही उपाय है, कथा को श्रवण करना। इसीलिए यहाँ पर जो ऋषिगण हैं उन्होंने खुद ही बोल दिया कि देखो हमें पता है सुत गोस्वामी जी, हम जानते हैं कि कलयुग के प्रभाव की दुर्वासना हृदय में जो घर कर रही है उसको शुद्ध करने का केवल एक ही उपाय है कि हम भगवान की कथा को श्रवण करें। तो ऐसा कौन होगा जो भगवान की कथा श्रवण नहीं करेगा, क्योंकि सब लोग तो चाहते हैं कि हम इस कलयुग की दुर्वासनाओं से, इस कलयुग के जो प्रभाव है उनसे मुक्त हो। लेकिन आज तो हम इन दुर्वासनाओं को, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य को शुद्ध करना चाहते ही नहीं है, हृदय में ये इच्छा ही नहीं है कि हम पवित्र हों। इसीलिए तो इन सारे शत्रुओं को, इन सारे राक्षसों को अपने हृदय में जगा दी है हमने। मैंने आपको पहले एक लेक्चर पहले बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो जय और विजय उनको किसी ऋषि ने श्राप दिया था, लेकिन वो मैंने बाय मिस्टेक बोल दिया था, चार कुमारों ने उनको श्राप दिया था राक्षस बनने की योनि, उनको तीन टाइम राक्षस बन के आना था इस संसार में। तो यही ये राक्षस है जो है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य के रूप में हमारे हृदय में घर कर चुके हैं। और इन राक्षस, जब ये राक्षस थे तब भी हम जानते हैं कि इनको मारने के लिए कौन समर्थ है, केवल भगवान। और भगवान की कथा में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, भगवान के नाम गुण लीला इनमें कोई अंतर नहीं होता है, वो साक्षात भगवान की तरह पावरफुल होते। तो यदि हम भगवान के पवित्र नाम को जप करेंगे, यदि हम भगवान की पवित्र कथाओं को श्रवण करेंगे, तभी इन अपवित्र भावनाओं से, तभी इन राक्षसों से हम अपने हृदय को शुद्ध कर सकेंगे। तो ऋषिगण कथा की लालसा को अत्यधिक तीव्र बता रहे हैं कि हम बहुत तीव्रता से सुनना चाहते हैं, तो आप हमें नहीं सुनाएंगे, कृपया हमें सुनाइए। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत सुंदर रीति से तात्पर्य समझाएंगे, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की इच्छा हो, श्रील प्रभुपाद जी कलयुग के विषय में बता रहे हैं कि कलयुग अपने कलह प्रदान गुणों के कारण अत्यंत ही निष्कृष्ट युग है, अत्यंत ही गिरा हुआ है, अत्यंत ही घिनौने अपराध होते हैं इस युग में, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है यहाँ पर। यह पापाचारों से इस प्रकार परिपूर्ण है कि थोड़ी सी ना समझी से बड़ी भारी लड़ाई हो जाती है। यहाँ पर इतने बड़े बड़े युद्ध होते हैं, विश्व युद्ध, क्योंकि कलयुग कलह प्रधान युग है, इसमें झगड़ालू युग है बहुत। तो थोड़ी सी ना समझी से बड़े बड़े युद्ध हो जाते हैं। जो भगवत भक्ति में लगे हैं, जिन्हें आत्म शलाघा की कोई इच्छा नहीं है, अर्थात जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, और जिन्हें इंद्रिय तृप्ति की कोई इच्छा नहीं है, और जो कर्मों के फल तथा शुष्क ज्ञान से मुक्त हैं, वे ही इस जटिल युग के बंधन से छूट सकते हैं। जो कर्मों के फलों से छूट जाते हैं, जो कर्मों के फलों में कोई आसक्ति नहीं रखते, जो शुष्क ज्ञान से मुक्त हैं, वे ही इस जटिल युग के बंधन, ये बंधन क्या है कलयुग में, क्योंकि अपराध होते हैं, तो अपराध के कारण बारंबार जन्म मृत्यु का जो बंधन है उससे वही छूट सकता है जो कि भगवान की भक्ति करता है। और अभी यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि लोग यहाँ पर शांति किस तरह से कायम करना चाहते हैं। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जनता के नेता शांति तथा मैत्री से रहने के लिए उत्सुक तो है, यानी कि चाहते हैं कि सब लोग शांति, विश्व में शांति हो, सब लोग शांति से रहें, कोई अपराध ना कहे, कोई झगड़ा ना करे, वो सब चाहते हैं जो नेता है। किंतु उन्हें भगवान की महिमा का श्रवण करने की सरल विधि के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन क्योंकि अज्ञान है वो कृत्रिम ढंग से दूसरे तरीकों से शांति को क्रिएट करना चाहते हैं, मना करके या फिर जोर जबरदस्ती करके या फिर और कुछ करके, कि वो चाहते हैं कि दूसरी विधियों से हम ये क्राइम को रोकें। लेकिन यहाँ पर श्री रूपा जी बता रहे हैं कि श्रवण की सरल विधि के बारे में उनको पता नहीं है कि बस भगवान की कथाओं को सुनाओ, किसी को आप अपराध करने से कितना रोकोगे, जैसे उसको मौका मिलेगा तो वो अपराध करना शुरू कर देगा। इसीलिए उसको ऐसा कुछ दो जिससे उसके अपराध करने की भावना का समूल नष्ट हो जाए, तो ये केवल कथा ही कर सकती है। और श्री प्रभुपाद जी कहते हैं इसके विपरीत ऐसे नेता भगवत महिमा के प्रचार के विरोधी है। वो विरोधी है ना, वो भगवान की कथाओं के लिए एग्री नहीं होते हैं, वो खुद अटेंड भी नहीं करते हैं और फिर बोलते हैं ये तो टाइम का वेस्ट है। लेकिन वो क्योंकि इस महिमा को नहीं जानते हैं, वास्तव में जो नेता ऐसा चाहते हैं ना कि हमारे देश में समृद्धि हो, शांति हो, सुख हो, तो उनको क्या कथाओं का आयोजन करना चाहिए, पब्लिक को ऐसा ऐसा मौका प्रोवाइड करना चाहिए जिससे कि वो भगवान के विषय में सुने, जिससे उनके हृदय के अंदर की गंदगी, हृदय के अंदर की जो मल है, अपवित्रता है, वो समूल नष्ट हो जाए। लेकिन वो खुद ही जानते नहीं, अज्ञानता के कारण तो विरोधी हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में मूर्ख नेता भगवान के अस्तित्व को ही नकारना चाहते हैं। क्या बोलते, भगवान नहीं है, भगवान भगवान नहीं है, हमें सिर्फ अपने उन्नति के लिए, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए कार्य करना है। आगे कहते हैं धर्म निरपेक्ष राज्य के नाम पर ऐसे नेता प्रतिदिन नई नई योजनाएं बनाते हैं, किंतु भगवान की प्रकृति की दुर्लभ्य जटिलताओं के कारण उन्नति की ये सारी योजनाएं निरंतर विफल होती रहती हैं। मतलब वो भगवान से रहित, यानी कि भगवान की भक्ति के से दूर होकर वो कोशिश करते हैं कि समाज में शांति पैदा करें और समाज में उन्नति हो, समाज सब सुखी हो जाए। लेकिन जब तक इसके अंदर, जब तक संसार में भगवान को आप ऐड नहीं करते हो, जब तक आप अपने किसी भी फील्ड में, जब भी आप भगवान की कथाओं को, भगवान के नाम को, इसको एड नहीं करते हो, तो वो कभी भी वहां पर शांति नहीं होगी। इसीलिए देखो, सब कोई देश ये नहीं चाहता है ना कि अपराध हो मेरे देश में, कोई देश ये नहीं चाहता है कि युद्ध हो, कोई देश के जितने भी नेता हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि कलह हो, झगड़ा हो, लेकिन वो सही वे नहीं यूज कर रहे हैं, उसको मिटाने के अलग अलग तरीके से कोशिश करते हैं कि हम इस तरह से युद्ध को रोकें, इस तरह से युद्ध को रोकें, इस तरह से। लेकिन श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं पूरे मानव समाज के अंदर यदि ये अपराध भाव, यदि हृदय के अंदर से अपराध की जो वासना है वो समाप्त करनी है, तो इन सबको भगवान की कथाओं और भगवान की कथाओं का श्रवण और भगवान के नाम का उच्चारण, ये सरल विधि अपनानी चाहिए। इसी से पॉसिबल है, क्योंकि एक यही तरीका है जिससे आपका हृदय शुद्ध होता है। अपराध खत्म करने के लिए केवल मना करना काफी नहीं कि अपराध मत करो, इससे अपराध लग रहा है, ये करोगे तो अपराध लगेगा, ये अपराध, इससे मेन तो आपके हृदय के अंदर जो अपराध की भावना है ना, वो समाप्त होनी चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी भगवद गीता बताते हैं 3.6 में, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो कर्मेन्द्रियों को वश में करता है किंतु जिसका मन इंद्रिय विषय का चिंतन करता है। अब हम अगर कृत्रिम विधि से, कोई दूसरी विधि से कर्मेंद्रियों को रोकते हैं कि भाई अपराध है, नहीं करेंगे, लेकिन उसका मन तो उसी अपराध के लिए चिंतन कर रहा होता है, दूसरे कर रहे हैं, उनको देख कर ऐसा लगता है कि मुझे परमिशन नहीं है, लेकिन यदि परमिशन होती तो मैं ये करता। लेकिन मजा तो तब है जब आपको कोई ना रोके, फिर भी आपको इच्छा ही ना हो अपराध करने की। और ये केवल तभी संभव है जब हृदय से अपराध की भावना समाप्त हो जाएगी। और उसका केवल एक ही तरीका है कि हम भगवान के पवित्र यश को, यशः कलिमलापः, ये भगवान के पवित्र नाम का यश, भगवान की कथाओं का यश, उनको जब श्रवण करते हैं तो उससे हमारे हृदय से अपराध की भावना समाप्त हो जाती है। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि लेकिन यहाँ पर इस अवरोध को पार करने के लिए संकेत मिलता है, यदि हम वास्तविक शांति चाहते हैं तो हमें भगवान कृष्ण को समझने का मार्ग खोल देना चाहिए और उनके महिमामय कार्यों के लिए उनका यशोगान करना चाहिए, जैसा कि श्रीमद् भागवतम के पृष्ठों में अंकित है। यानी कि अगर वास्तव में ये लोग, जो भी नेतागण है या जो भी जीव चाहता है कि इन तमाम अपराधों से हमारा हृदय विमल हो जाए, इन तमाम अपराधों से हमारे हमारी इच्छा खत्म हो जाए, तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए, जो कि श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि भगवान की महिमाओं का यशोगान करना चाहिए, भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा हृदय पवित्र हो जाता है और हृदय के अंदर अपराध की भावना आती नहीं है। तो यहाँ पर ऋषिगण कहते हैं, जो वाकई में चाहता है कि मैं शुद्ध हो जाऊं, जो वाकई में चाहता है कि मेरे हृदय से अपराध की भावना समाप्त हो जाए, तो ऐसा कौन होगा जो भगवान की कथा नहीं सुनेगा, अर्थात सब सुनेंगे। तो कृपा कीजिए सुत गोस्वामी, आप हम सबको भगवान की कथा सुनाइए। तो यहाँ तक हमने पढ़ा और अब कल हम श्लोक नंबर 17 में ऋषियों का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे कि उन्होंने चौथा क्वेश्चन क्या पूछा है। वास्तव में सारे क्वेश्चन डायरेक्ट से भगवान श्री कृष्ण के लिए हैं, उनकी महिमा के लिए हैं। तो अब देखते हैं कल क्या पूछ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।